السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. كيفي آپ سب لوگ؟ الحمد لله میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. پہلے ہم اپنے ہوم ورکس ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے ہم لوگوں کا یہ لاسٹ ٹو ہوم ورکس کہتے ہیں کہ مرکب اضافی جو تھا ضمائر کے ساتھ وہ بھی تھا ہمارا ہوم ورک آج ڈسکس کرنے والا, اور مرکب جاری والا بھی. تو اس میں جیسے مرکب اضافی کا تھا, اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا ہوا ہے اموال, ہمارے اعمال کی جو پلورل ہے وہ انہوں نے لکھی ہے. ہاں جی, اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے, الحمدللہ ٹھیک ہے. میں مرکبے اضافی کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک آپ لوگوں کے پاس ترکیب تھی ہمارے اعمال, تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے اس کو لکھا اموالونا. تو ہم نے اس کو اعمال لام کے بعد واو کو ایڈ نہیں کرنا, کیونکہ ہمارے پاس جو اعمال ہے وہ جمع تکثیر آتی ہے, اور جمع تکثیر کے میں پھر ہم واو نون آخر میں ایڈ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جیسے سیارۃ الفاطمہ ایک ترکیب تھی, وہاں پہ آپ نے ضمیر کو ایڈ کرنا تھا, تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے سیارۃ الہو کی ضمیر لگائی, یعنی جو مذکر کی ضمیر ہے وہ انہوں نے استعمال کی. تو اس لیے آپ کو جب ضمیر لگانی ہے تو دھیان رکھنا ہے کہ مذکر کی ضمیر کرنی ہے یا مونس کی کرنی ہے. تو سیارتہا استعمال کریں گے اس کے ساتھ. پھر اسی طرح جیسے ایک تھا تمہارا دین, اس کو آپ نے کنورٹ کرنا تھا عربی میں, تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے دینکم لکھا. تو تمہارا جو ہے وہ سنگولر ہے, اس کے لیے آپ کو کا کی ضمیر یوز کرنی ہے, دینو کا کی ضمیر یوز کرنی ہے. جب آپ کو ملے گا اردو میں تمہارے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ہیں. تمہارے کے لیے پھر آپ کم کا صیغہ استعمال کریں گے, لیکن جب تمہارا ہے تو پھر آپ نے سنگولر ضمیر یوز کرنی ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے کتاب حامد و محمود, یہ ایک ترکیب تھی جس میں آپ نے ضمیر ساتھ میں ایڈ کرنی تھی. تو ایک اسٹوڈنٹ نے اس کو ایسے لکھا کہ کتاب ہو و ہو. تو اس میں جب آپ کے پاس دو لوگ آگے ہیں, یعنی حامد اور محمود ہیں, تو آپ نے تسنیہ کا صیغہ لگانا ہے, کیونکہ ضمیر ایڈ کرنی ہے آپ نے. تو اس کو آپ نے ہما کے صیغے کے ساتھ لکھنا ہے. کتاب ہما ایسے. پھر اسی طرح قلم زینب و مریم. اب یہاں پہ پہلے ہمارے پاس کتاب حامد و محمود میں دونوں مذکر تھے, تو ہم نے کتاب ہما لکھا. اب قلم زینب اور مریم, تو اس میں ہم نے یہاں پر بھی قلم ہما کرنا ہے, کیونکہ تثنیہ کے صیغے مذکر اور مؤنث کے لیے ہمارے پاس سیم ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں ہم نے ہما ہی کی ضمیر کو یوز کرنا ہے, ٹھیک. اور اسی طرح خزائن السماوات والارض, اس کو آپ نے ضمیر اس کے ساتھ فکس کرنی تھی, تو یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے خزائنہن لکھ دیا تھا. تو چونکہ ہمارے پاس زمین اور آسمان ہیں, دو چیزیں ہیں, تو ہم نے یہاں پر تسنیہ کی ضمیر ایڈ کرنی ہے, خزائنہما, ٹھیک ہے. मुरक्कबे जारी के हिसाब से जो आपकी एक स्टूडेंट ने, ये मुरक्कबे जारी वाला आसान था, तो इसमें इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं थी, ज़्यादा होमवर्क्स ठीक थे, लेकिन इसमें एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था आफा का, एक तरकीब लिखी हुई थी जो आपने कुरान मजीद से फाइंड आउट करके लिखना था आफा का। तो ये जो तरकीब है ये आप करेक्ट कर लें कि ये फेल के साथ है, ये मुरक्कब जारी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम सारे अस्मा को डिस्कस कर रहे हैं, तो मुरक्कब जारी में हमारे पास हुरूफ जारा होते हैं और सॉरी मुरक्कब इजाफी, ये इजाफी ही है आसा का, इसमें फेल आ रहा है तो फेल नहीं आएगा इसमें। आप जब ढूंढेंगे तो आप अस्मा को ज्यादा हाईलाइट रखेंगे अपने उसमें, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्लास में होमवर्क था मुक्तदा और खबर के हवाले से, उसमें मैंने देखा कुछ स्टूडेंट का होमवर्क जो आपको ट्रांसलेशन दी हुई थी, ऊपर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए थे, वो काफ़ी सारा उसमें मिस्टेक्स आ रही थी। तो वो होमवर्क जो सिर्फ क्योंकि आपके पास दो चीज़ें थी, आपने एक तो जो आपके पास 24 सेंटेंसेस थे उन्हें आपने अरबी में ट्रांसलेट करना था, और दूसरा आपका पैराग्राफ था। जो पैराग्राफ है वो काफ़ी स्टूडेंट ने ठीक लिखा है, बस उसमें दो लफ्ज़ थे वोकेबलरी के जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ स्टूडेंट्स को, तो बाकी जो है वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जो ट्रांसलेशन थी वो आप इस वीक के लिए भी रखें अपनी, कि इंशाल्लाह आपने ट्रांसलेशन वो दोबारा से करनी है। थोड़े से सेंटेंसेस मैं आपको आज करवाऊंगी, फिर उसके बाद आपने दोबारा से करना है, ठीक है। इसमें जो ट्रांसलेशन है उसमें हम देख लेते हैं जो पैराग्राफ था, जैसे फातिमा और जैनब रदी अल्लाहु अन्हुमा इनकी बेटियां हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने प्लूरल यूज कर दिया, फातिमा तु व जैनब बनातुहु, तो यहाँ पे हम बनातुहु नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास पीछे हम फातिमा और जैनब की बात करें जो दो हैं, तो बिनताहु लिखेंगे, यानी जो बिन से बिनता तस्निया का सीगा, फातिमा तु व जैनब बिनताहु, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टू सेंटेंसेस थे वो क्या थे, कि अबू बकर और उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर हैं, तो जो सुसर हैं सुसर के लिए जो वोकेबलरी है वो हमवाहू होती है, हमवा होती है, और हु फिर उसके साथ दमीर लगेगी कि अबू बकर व उमर हमवाहू। क्या अब इस सेंटेंस को आप लिखेंगे तो इस चीज का ध्यान रखें कि मीम के ऊपर आपने सुकून डालना है, हम हुआ हूँ ये वर्ड है, हाँ जी। ये जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि तेरा और तुम्हारा जो है ये सिंगुलर के लिए, जब आपके पास तुम्हारे आ जाएगा बड़ी ए के साथ उर्दू में, तो फिर आप उसको प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि उस्मान और अली रदी अल्लाहु अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, तो दामाद के लिए हमारे पास वर्ड होता है खतनाहु, उस्मानु व अली रदी अल्लाहु अन्हुमा खतनाहु, यहाँ पे आप देखें हम हमवा और खतना, ये अगर हम दमीर के बगैर इसको पढ़ें तो ये जो अलिफ आ रहा है एंड में, हम वा के एंड में और खता ना के एंड में, ये तस्निया के लिए है, क्योंकि हमारे पास पीछे अबू बकर और उमर या उस्मान और अली हैं, इसलिए हमने तस्निया का यहाँ पर सीका यूज़ किया है। और जो हु की दमीर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही है, हम वा हु आपके सुसर और खतना हु आपके दामाद। वो अब्दुल्ला के बेटे हैं, हुआ इब्नु अब्दुल्ला ही, क्योंकि यहाँ पे हमने दमीर यूज करनी है वो के साथ, वो की वजह से। हाँ जी, इसमें इब्न आएगा, हुआ इब्नु अब्दुल्ला ही। ठीक है, ये हमारी जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ थी ये ठीक है, लेकिन जो आप लोगों को शुरू में 24 सेंटेंसेस करने थे वो आप थोड़े से मैं आपके साथ करती हूँ प्रैक्टिस, फिर उसके बाद आपने दोबारा उनको इस वीक के लिए भी होमवर्क रखना है। लेकिन हम थोड़ी सी जो इनकी ट्रांसलेशन करने से पहले हम पेपर को, टेस्ट को अपने डिस्कस कर लेते हैं। सारे स्टूडेंट्स के नहीं मैंने चेक किए अभी, लेकिन जिनके मैंने चेक किए हैं तो उस हिसाब से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं पेपर की, फिर उसके बाद हम इन सेंटेंसेस की तरफ दोबारा आएंगे। सुसर और दामाद का जो वर्ड है वो मैंने आपको लिख के मैसेज में दिया है। खोता ना हूँ होता है, खोता ना जो है वो दामाद के लिए है, और हम वा जो है वो सुसर के लिए है। ये दोनों सेंटेंसेस मेरे मैसेजेस में देखें आप, लिखे हुए हैं। सेंटेंसेस में वोकैबुलरी के अलावा जो तरकीब यूज हुई हुई है, जैसे क्योंकि इन जुमलों के अंदर आपको कभी मुरकबे इजाफी बनाना है, कभी तौसीफी बनाना है, तो उसमें भी मिस्टेक आ रही है। वोकैबुलरी की भी चले जो मिस्टेक, जो प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो तरकीब के हवाले से मिस्टेक है वो भी मुझे मिली है। तो पहले हम अपने पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग अपने पेपर्स खोल लें जहाँ जहाँ आपने सॉल्व किए, ताकि जो चीज़ मैं बताऊँ वो आप मार्क कर लें साथ में। ठीक है, जो हमारा पेपर था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था मुनसरिफ असमा की 5 मिसालें आप लोगों ने कुरान मजीद में से ढूंढ ली थी, और उन 5 मिसालों की आपने 3 अराबी हालतें लिखनी हैं। अब इसमें क्या हुआ कि एक स्टूडेंट का मुझे इसमें मिला था कि उन्होंने जो ऊपर 5 वर्ड्स फाइंड आउट किए, उन्होंने नीचे उन्हीं की एराबी हालत को डिस्कस कर दिया। तो उनकी एराबी हालत आपने नहीं बतानी थी, बल्कि आपने जैसे अगर वर्ड ढूंढा है आदाबुन, तो आपने नीचे उसकी 3 अराबी हालतें लिखनी थी, आदाबुन आदाबन आदाबिन, हालत रफ, हालत नसब, हालत जर की, इस तरीके से आपने 3 हालतें लिखनी थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे आप लोगों को आयात उनमें से आपने मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी को फाइंड आउट करना था। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस था वअल्लमा आदम अल अस्मा अकुल्लाहा, यहाँ पे आदम एक वर्ड है जो कि हमारे पास गैर मुनसरिफ है, अम्बिया के नाम नाम नामों में आता है। अस्मा को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गैर मुनसरिफ लिख दिया, हालांकि ये मुनसरिफ इस्म है, क्योंकि अस्मा इसी आयत में जो आया अल बकरा की 31 आया से ये लिया था, तो इसी के आप आयत को आगे पढ़ें तो बी अस्मा ई आ रहा है, यानी ये वर्ड कसरा कबूल करता है और जो गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं वो कसरा कबूल नहीं करते। अब यहाँ पे तनवीन क्यों नहीं आई, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे एज अ मारिफा यूज हुआ है, معرفہ میں آپ کے پاس جب الف لام ایڈ ہو جاتا ہے تو پھر اینڈ میں تنوین نہیں آتی ال کی وجہ سے. تو یہ کچھ اسٹوڈنٹس سے مسٹیک ہوئی کہ انہوں نے الاسماء کو غیر منصرف لکھا, یہ منصرف اسم ہے الاسماء. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح نیکسٹ میں ہمارے پاس نیکسٹ سینٹینس میں صرف ابلیس تھا جو غیر منصرف اسم ہے. پھر تھرڈ ون سینٹینس تھا ہمارے پاس آیا کا پورشن تھا وہ کھلا منہا روادن, روادن سے موسٹلی اسٹوڈنٹس نے منصرف لکھا تھا. ٹھیک ہے, ولکم فی الارضی. پھر فورتھ ون ہمارے پاس تھا ولکم فی الارضی مستقر ومتاع الی حین. اس میں آپ کے پاس چار اسماء آ رہے ہیں, الارض, مستقر, متاع, حین. یہ چاروں آپ کے پاس منصرف اسماء ہیں, جس نے بھی ایک کسی اسم کو مس کر دیا اس نے اس کا جو ہے وہ مارک پھر مائنس ہو گیا, کیونکہ یہاں پہ جتنے اسماء آپ کو دیے گئے تھے ان کے حساب سے مارکس ڈویژن ہوئی تھی. آپ لوگوں کو اب آواز آ رہی ہے؟ جی میں فورتھ ریپیٹ کر دیتی ہوں, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے, فورتھ ون جو ہمارے پاس آیا تھی ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین, سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 36 کا یہ پورشن ہے. اس میں آپ کے پاس چار اسماء ہیں جو کہ اس آیا میں آئے ہیں, الارض, مستقر, متاع اور حین. یہ چار اسماء ہیں اور یہ چاروں منصرف ہیں. تو اس میں سے اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی مس کیا ڈیفائن کرتے ہوئے تو پھر اس کا نیگیٹو مارکنگ ہوگی. پھر ففتھ ون آیا ہے ولا تقربا هذه الشجرة, هذه اس میں ہمارے پاس آ رہا ہے جو کہ مبنی ہے, اور الشجرة یہ ہمارے پاس منصرف اسم آ رہا ہے. ٹھیک, پھر سکس نمبر جو ہے ہمارے پاس وہ اذ قلتم یا موسى لن نؤمن, یہاں پہ موسى جو الارض ہے وہ بھی ہمارے پاس منصرف اسم آ رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں فی الارض جار مجرور کا ہمارے پاس مرکب بن رہا ہے اور ارض کے نیچے زیر آ رہی ہے. اب اس پہ تنوین اس وقت اس لیے نہیں آئی کیونکہ یہ ال کے ساتھ ہے, الف لام کے ساتھ. ٹھیک, تو جو سکس نمبر سینٹینس ہے اس میں ہمارے پاس صرف موسیٰ تھے جو کہ مبنی اسم ہے. اس موسیٰ کو بھی کچھ اسٹوڈنٹس نے غیر منصرف لکھا, تو غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ جب ہمارے پاس الف مقصورہ ان میں آ جاتا ہے تو پھر وہ مبنی بن جاتا ہے, کیونکہ وہ تینوں اعرابی حالتوں میں اس کی ایک ہی حالت رہتی ہے, موسیٰ موسیٰ ہی رہے گا کسی بھی اعرابی حالت میں آئے. ٹھیک, پھر جو لاسٹ ہمارے پاس سیونتھ ون تھا سورۃ البقرہ آیت 61 میں ہوا ادنا بالذی ہوا خیر, اس میں آپ کے پاس ادنا ایک اسم تھا الذی, یہ دونوں ادنا اور الذی یہ دونوں ہمارے پاس مبنی اسماء ہیں, اور ہوا خیرن, خیرون جو ہے یہ بھی ہمارے پاس اسم تھا جو منصرف تھا. ٹھیک, اب ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی طرف. کوشچن نمبر 3 میں بہت سارے اسٹوڈنٹس سے کچھ کچھ مسٹیکس ہوتی رہیں, اور اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس نے کیا کیا, جیسے فرسٹ ون آیا تھی ما کانا للہ ان یتخذ من ولد, ولد نے جب آپ نے جمع بنائی بہت سارے اسٹوڈنٹس نے تو انہوں نے ولدون لکھ دیا, حالانکہ ولد کی جمع اولاد ہے. اور میں نے جتنے بھی قرآن مجید سے ورڈز آپ لوگوں کو دیے اگر وہ جمع تکثیر کے تھے تو وہ ہم کلاس میں ڈسکس کر چکے تھے, اسی لیے میں نے ان کو آیاز میں دیا, ورنہ ایک سمپل قاعدہ کہ آپ نے ہر ورڈ کے آگے واو نون لگا دینا ہے تو یہ تو عام طور پر بہت آسان چیز ہے, لیکن جمع تکثیر میں جو چیزیں تھیں وہ پھر آپ کو یاد کرنی تھیں جو ہم نے کلاس میں ڈسکس کی ہیں, جو ہم نے اگزامپلز وہاں پر کی ہیں, ان ساری چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا تھا. लेकिन यहाँ पे जैसे अल अहज़ाब है, इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अल अहज़ाब, हालांकि जमा आपके पास आ रही है, और इसको भी स्टूडेंट ने अहज़ाबून लिख दिया वाउ नून के साथ। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं। बहरहाल मैं इनकी आपको वाहिद तस्निया और जमा बता देती हूँ, जिस जिस स्टूडेंट की मिस्टेक हुई है वो फिर आप अपनी करेक्ट कर लें। फर्स्ट आया में जैसे वलद था, तो वलद वाहिद है, तस्निया वलदान, और औलाद इसकी जमा है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में हमारे पास था अल अहज़ाब, हिजबुन वाहिद, हिजबानी तस्निया, और अल अहज़ाबु जमा, ठीक है। इसी तरह थर्ड वन में हमारे पास अब गौलीमून आ रहा है, तो गौलीमुन वाहिद, गौलीमानी तस्निया, और गौलीमूना जमा, ठीक। इसके बाद फोर्थ वन आया जो हमारे पास थी, उसमें यौम वर्ड था, यौम वाहिद, यौमानी तस्निया, और अय्याम, ये भी हमारे पास जमा तकसीर है, अय्याम इसकी जमा है, ठीक। फिर हमारे पास फिफ्थ वन में नबीयन था, नबी सिंगुलर है, फिर इसकी तस्निया नबीयानी, और इसकी जमा हमारे पास दोनों तरीके से कुरान मजीद में आती है, नबी यूना भी आती है और अल अम्बिया भी आती है। तो किसी ने अगर नबी यूना लिखा तो भी मैंने उसको करेक्ट किया, और अगर किसी ने अम्बिया लिखा तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों जमा हमारे पास कुरान मजीद में आ रही है। अम्बिया, ठीक है। फिर सिक्स वन हमारे पास था वलीयन, तो इसमें सिंगुलर है वली, तस्निया इसकी है वलीयानी, और जमा इसकी है औलियाउ। जो तस्निया है वो अलिफ नून के साथ ही बनती है, नबीयानी, ठीक है। फिर हमारे पास सेवंथ है असलात आया था, बिस सलाती, तो सलात सिंगुलर है, तो इसकी तस्निया सलातानी और असलावात, अलिफ ता के साथ इसकी जमा बनती है। फिर जो लास्ट एट वन आया थी, वतफिरुल जिबालु हद्दा, इसमें अल जिबाल, जबलुन इसकी सिंगुलर है, जबलुन, जबलानी तस्निया है, और अल जिबालु इसकी जमा है, या जिबालु जिस भी तरह आप लिखें इसकी जमा है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, जिसमें आपके पास वर्ड्स थे और आपने उनकी अरबी हालतें बतानी थी, जैसे लिब गौलीमीना, ये आपके पास हालत नसब और हालत जर में सेम है, ये जो स्टूडेंट ने लिखा है नसब जर और तस्मिया, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। जिबाल जमा है, जबलुन इसकी सिंगुलर है, जबलानी तस्मिया, और जिबाल इसकी जमा है। اگر آپ نے واحد تثنیہ اور جمع میں اعرابی حالت کو نہیں دیکھا جو آیت میں آئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہاں پہ آپ کی اعرابی حالت کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا, بلکہ آپ کی جو ہے کہ آپ نے واحد تثنیہ اور جمع ٹھیک ہی نصب میں ہے تو بھی, جر میں ہے تو بھی, اور رف میں ہے تو بھی, کوئی اس سے وہ چیز میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے, جیسے اب غالمین تھا ہمارے پاس ایک, تو اس کی حالت نصب اور حالت جر یہ دونوں لکھنی تھی. پھر العذاب یہاں پہ آپ نے اس کو حالت رف لکھنا تھا. اسی طرح میتون یہ بھی صرف حالت رف ہے. المحسنین یہ حالت نصب اور حالت جر دونوں ہیں. اور شفعاء میں بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مس کر دیا کہ یہ ہمارے پاس غیر منصرف اسم ہے شفعاء, اور اس کو آپ نے حالت نصب اور حالت جر دونوں لکھنا تھا اس کے ساتھ, کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے, اور غیر منصرف میں آپ کے پاس جو حالت نصب اور حالت جر ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہی آتی ہے لاسٹ لیٹر پہ. تو اس لیے یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹ سے مسٹیک ہوگی کہ انہوں نے ایک اعرابی حالت کو مس کر دیا. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کا پیپر ہو گیا ڈسکس. پیپرز انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی کہ اس ویک تک آپ لوگوں کو مل جائیں. اور ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں اپنے اس کے اوپر. ہاں جی, پیپر میں جیسے آپ کی اعرابی حالت آپ کو لکھنے کے لیے کہا گیا تھا کوشچن نمبر 1 میں, تو ایک اسٹوڈنٹ نے اعرابی حالت لکھی ہے, جیسے انہوں نے جو بھی اپنے سینٹینسز اپنے ورڈز ڈھونڈے ہوئے تھے اس کی, جب انہوں نے 3 اعرابی حالتیں لکھیں تو اس میں انہوں نے جو حالت نصب تھی اس کو انہوں نے عذاب ڈبل فتحہ کے ساتھ لکھا, لیکن اس کے ساتھ میں الف ایڈ نہیں کیا. جیسے انہوں نے لکھا تھا عذابن, با کے اوپر ڈبل فتحہ ڈال دی لیکن ساتھ میں الف ایڈ نہیں کیا. تو اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ جب آپ کے پاس ڈبل فتحہ لاسٹ والے لیٹر پہ آ رہی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ میں الف ایڈ کرنا ہے. اور یہ چیز ہم نے جب اعراب والا ٹاپک پڑھا تھا اس وقت ہم نے دیکھی تھی کہ عذابن جب ہمارے پاس با ڈبل فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک الف ایڈ ہوتا ہے. اور آپ قرآن مجید میں بھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ جہاں پہ بھی ڈبل فتحہ کے ساتھ آپ کو اسم اینڈ اپ ہوتا ہوا مل رہا ہے اس کے بعد میں الف ایڈ ہوا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم ہمارے سینٹینسز پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جو ٹیسٹ ہوئے ہیں آپ کے یہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی انشاءاللہ واپس, بس میں کمپلیٹ کر لوں پھر میں سینڈ کروں گی انشاءاللہ. اب ہم کچھ سینٹینسز کر لیتے ہیں ان کی ٹرانسلیشن, پھر باقی آپ سینٹینسز کو دوبارہ سے دیکھیے گا جو تو ہوم ورک ساتھ میں کیے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جیسے پہلا آپ لوگوں کے پاس تھا زید نیک لڑکا ہے, تو ہم نے جو اس کے رولز پڑھے تھے اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جو مبتدا ہے وہ ہمارے پاس نارملی معرفہ کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں جی, مبتدا ہمارے پاس معرفہ ہوتا ہے. اب اگر کوئی نام ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کو الف لام ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے یہاں پر ہمارا جو مبتدا ہے وہ زید بن رہا ہے, تو ہم زید کو از زید نہیں کریں گے کیونکہ نیم معرفہ ہی میں ہوتے ہیں. پھر آپ نے اس میں جو ہم نے اسم معرفہ کے اندر ساری ٹائپس پڑھی تھی اس کو پھر سے ایک دفعہ ریکال کر لیں تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ یہ کر سکیں اپنا ہوم ورک. ٹھیک ہے, اس میں زید غلط, زید جو ہے وہ نیک لڑکا ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس جو نیک لڑکا ہے یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے جو کہ آپ کے پاس خبر ہے. ہاں جی, صرف زیدن ہوگا, از زیدن نہیں ہوگا. जैदून भी हो सकता है और जैदू भी हो सकता है, क्योंकि आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अज़ज़ैद नहीं हो सकता, यानी अलिफ लाम नहीं आप ऐड करेंगे ज़ैद के साथ में। फिर वलदुन सालिहुन, हमारे पास मुरकबे तौसीफी बनता है नेक लड़का का, तो हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो होगा ज़ैदुन या ज़ैदु वलदुन सालिहुन। ठीक है, अब इसमें हमने देखा था कि खबर जो है वो नॉर्मली हमारे पास नकिरा में आती है। ठीक, फिर हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, हामिद का भाई सच्चा है। हामिद का भाई सच्चा है, इसमें हमारे पास हामिद का भाई ये मुब्तदा बनता है, और जो कि मुरकबे इजाफी है। तो इसमें भी कुछ स्टूडेंट ने अल अख करके स्टार्ट किया, तो आपके पास जो मुरकबे इजाफी है वो आप उसको मारिफा करने के लिए अगर आप अलिफ लाम ऐड करेंगे तो आप मुदाफ इलेह के साथ करेंगे। मुदाफ जो है वो हल्के अराब के साथ और अलिफ लाम के बगैर होता है, तो इसलिए जो अख है उसके साथ आप अलिफ लाम ऐड नहीं करेंगे। और दूसरी चीज ये कि हमने जो अख है उसको ये चीज देखी थी जब हमने मुरकबे इजाफी पढ़ा था कि उसकी एराब को हम वाओ अलिफ या के साथ हमने उसको करना था, उसके लिए हम एराब नहीं यूज करते, ये हरकात नहीं यूज करते, फतह कसरा दम्मा यूज नहीं करते, तो इसलिए हमारे पास हामिद का भाई अखू हामिद बनता है। जो इसकी मुरकबे इजाफी बनती है वो हमारे पास अखू हामिद बनती है, और हामिद जैसे नाम है तो इसलिए आपने उसको अलिफ लाम के साथ नहीं लिखना। नाम के लिए यह है कि वो मारिफा है, उसको आप अलिफ लाम के साथ नहीं लिखेंगे। कुछ नाम होते हैं जिनके साथ अलिफ लाम आता है उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन हर नाम को आप अलिफ लाम के साथ नहीं लिखते। ठीक है, अखू हामिदिन, हामिद का भाई सच्चा है, सादिकुन, हामिद का भाई सच्चा है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो हामिद का भाई तरकीब है वो मुरक्कबे इजाफी है, तो इसमें हमने अख के साथ अलिफ लाम ऐड नहीं करना, क्योंकि मुरक्कबे इजाफी में हमने पढ़ा था कि जो मुदाफ होता है वो हल्के अराब के साथ होता है और अलिफ लाम के बगैर होता है, तो इसको हमने अखू हामिदिन लिखना है जो मुरक्कबे इजाफी इसकी बनाएंगे हम। और फिर हामिद का भाई अखू हामिदिन सच्चा है, सादिकुन, खबर हमारे पास नकिरा होगी। इसमें आप पहले जब सेंटेंस को कन्वर्ट करने लगे तो आप पहले ये देख लें कि आपके पास मुब्तदा जो है वो कोई मुरक्कब है या नहीं, फिर उसके बाद आप पहले उस मुरक्कब को बनाएं और फिर उसके बाद आप सेंटेंस को करें। आप अगर जल्दी करेंगे इस चीज में तो फिर कुछ मिस्टेक्स होने का खतरा है। ठीक है, थर्ड वन हम देखते हैं, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो मोहम्मद है ये मुब्तदा है और अल्लाह के रसूल खबर है, तो मुहम्मदुल अल्लाह के रसूल हमारे पास मुरकबे इजाफी है, रसूलुल्लाही। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की जो गलती ज्यादा आ रही थी वो ये थी कि वो हर लफ्ज के साथ अलिफ लाम को ऐड कर रहे थे, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने मुरकबे इजाफी में मुदाफ के साथ अलिफ लाम को ऐड नहीं करना। ठीक है, और अगर मुरकबे तौसीफी है तो फिर आप ये चीज देखेंगे कि सिफा और मौसूफ दोनों अलिफ लाम के साथ होंगे या दोनों जो है वो अलिफ लाम के बगैर होंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपकी तरकीब कौन सी है। इसमें असल में आपकी पूरे मुरकबात को लेके तो उसकी एक तरह से प्रैक्टिस है। महमूद हामिद है ये, हामिदुन नहीं होगा बल्कि हामिदिन होगा, कसरा के साथ होगा, अखू हामिदी या अखू हामिदीन होगा। हाँ जी, नंबर नंबर ओके नंबर थ्री को अभी हम देख लेते हैं। मोहम्मद, अच्छा यहाँ पे जो मोहम्मद है, ठीक है, मोहम्मद उन भी लिख सकते हैं आप और मोहम्मदू भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मारिफा है। इसके साथ अगर आप दमा तन्वीन भी डालेंगे तब भी ये मारिफा ही रहेगा। और रसूलुल्लाही के आपकी जो है वो मुरकबे इजाफी की तरकीब बनती है, अल्लाह के रसूल। ठीक, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, झूठा आदमी मौजूद है। अब यहाँ पे झूठा आदमी आपके पास मुरकब तौसीफी आ रही है, तो यहाँ पे हमें करना है अर्रजुलु अल काजिबु। इसमें आपके पास दोनों के पास, दोनों में जो है नहीं है, बल्कि झूठा आदमी जब आप बनाएंगे तो आप उसको मारिफा ही के साथ उसकी तरकीब करेंगे। अर रजुलु अल काजिबु मौजूदुन, तो आपकी खबर है वो नकिरा होगी। अर रजुलु अल काजिबु मौजूदुन, ठीक है, इसमें रजुल में लाम मिस हो गया। ओके, फिर हम लास्ट कर लेते हैं एक और, अल्लाह की मदद करीब है। अब इसमें हमारे पास जो मुब्तदा है वो अल्लाह की मदद मुदौक मुदौक ले है। इसको हमने मारिफा तरकीब रखनी है, तो उसके लिए हमने मुदौक इले को मारिफा रखना है, क्योंकि मुदौक हमारे पास कभी भी अलिफ लाम के साथ नहीं आता। तो इसमें हमने अल्लाह की मदद नसरुल्लाही, जो अल्लाह है वो मारिफा होगा, यानी जो मुदौक इले है वो मारिफा होगा। नसरुल्लाही करीबुन, और मुब्तदा जो खबर है वो हमारे पास नकिरा फॉर्म में होगी। ठीक है, वोकैबलरी के हवाले से अगर आप अभी क्वेश्चन पूछ लें तो ज्यादा अच्छा है, जिसको जो वोकैबलरी नहीं आई। ओके, 16th वन, हाँ, अल्लाह तमाम जहानों का मालिक है। अब यहाँ पे देखें, अल्लाह जो है वो मुब्तदा है और तमाम जहानों का मालिक, ये हमारे पास जो तरकीब बनती है ये मुरकबे इजाफी बन रहा है मुदौफ मुदौफ इले के हिसाब से, तो तमाम जहानों का मालिक, ठीक है ना। तो आप देखें कि तमाम जहानों का मालिक, तमाम जहान हमारे पास आलमीन है और मालिक रब। तो पहले हम मुब्तदा लिखेंगे अल्लाहु, और फिर तमाम जहानों का मालिक रब्बुल आलमीन। यहाँ पे हम रब्बुल आलिमून नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने जो मुदौफ इले है उसको हालत जर में रखना है। ठीक है, तो जो जो चीजें पड़ी हुई हैं उन सारी चीजों को आप रिवाइज करके अच्छे तरीके से फिर आप इस होमवर्क को करें। अल्लाह रब्बुल आलिमून, हामिद का ये कलम पुराना है। ठीक है, अब आप देखें कि हामिद का कलम हम अगर देखेंगे तो वो हमारे पास मुदौफ मुदौफ इले की तरकीब बनती है मुरकबे इजाफी। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ क्या करना है कि कलम के साथ ये का वर्ड यूज कर देना है, हादा, यानी तरकीब आपकी मुरकबे इजाफी बनेगी। हामिद का कलम आप पहले बनाएं, कलम हामिद, और फिर उसके बाद आप हाजा लिखेंगे, कलम हामिदी हाजा कदीमुन, ऐसे करके आप इस तरकीब को लिख सकते हैं कि हामिद का कलम और हाजा जो है वो फिर कलम की साइड पे होगा। हाँ जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन होगा। हाँ जी, मालिक भी हो सकता है। ठीक है, फिर ओके, 18th नंबर हमने कर लिया बस। ठीक है, चलें, अब आप इस वाली असाइनमेंट को दोबारा से कोशिश कीजिएगा, फिर हम इसको नेक्स्ट वीक बाकी जो है उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हम अपने आज के लेसन में देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से वो भी हो जाए। हम लोग मुब्तदा और खबर को देख चुके थे और उसमें फिर हमने जिस चीज पे एंड किया था वो हमारी थी मुतल्लिक खबर। मुतल्लिक खबर के ऊपर थे हम कि मुब्तदा हमारा नॉर्मली मारफा होता है और जो हमारी खबर है वो नकीरा होती है, और इसके साथ में बाज दफा एक मुतलिक खबर यानी जो कि हमारी वोकैबलरी। अगर आपको चाहिए तो आप अभी पूछ लें मुझसे, क्योंकि मेरे पास लास्ट वीक भी इंटरनेट नहीं था, तो मैं कहीं जाती हूँ फिर इंटरनेट यूज करके वापस घर आती हूँ। तो अगर किसी का वोकैबलरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें, वीक के बीच में मुझे मुश्किल हो जाएगा। इस वीक भी मेरे इंटरनेट का थोड़ा मसला ही है, तो ठीक है। इसमें मुतल्लिक खबर था कि बाज दफा हमारे पास कोई खबर की ज्यादा एक्सप्लेनेशन होती है जो हमारे पास हमें जरूरत होती है, हमें दी जाती है उस जुमले के अंदर, यानी खबर को ज्यादा एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। पंखा मिरवाहतुन, ये हमारी इससे पहले वोकैबुलरी गुजर चुकी है पंखे की, और मगज मुखुल इबादा, ये जो मगज है इसकी से अरबी है मुख। ठीक है, तो जैसे इसमें हमारे पास एक हदीस की भी मिसाल थी कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, के इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान पर। अब यहाँ पर फरीदतुन को ज्यादा एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फर्ज है, तो आया सिर्फ बच्चों पे या बड़ों पे या औरतों पे, मर्दों पे, किस तरीके से, तो वो फिर उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया जा रहा है, यानी मुतल्लिक खबर है अला कुल्ली मुस्लिम, ये खबर से रिलेटेड आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, और बाज दफा क्या होता है कि जो मुतल्लिक खबर है वो खबर से पहले आ जाती है, जैसे इसकी मिसाल हमें मिलती है कुरान मजीद में ही कि अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये बहुत बार ये जुमला आता है आयत के आखिर में, अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। अब इसमें आप देखें कि अल्लाह मुब्तदा है और उसकी खबर जो है वो क़दीर है, कि अल्लाह ताला क़ादिर है, हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है। अला कुल्ली शैइन, ये अब क़दीर को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अल्लाह ताला की कुदरत कैसी है कि वो हर चीज के ऊपर क़ादिर है। ठीक है, इसमें मुतल्लिक खबर बाज़ दफा खबर से पहले आ जाती है, ये इस चीज की मिसाल है, अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। अब हम मुतल्लिक खबर ही से रिलेटेड थोड़ा सा और देखते हैं कि जैसे हमें एक जुमला मिलता है कि कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। अब यहाँ पे आप देखें कि कुरान हिदायत है, ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है मुब्तदा और खबर वाला, तमाम इंसानों के लिए। इसको आप देखें तो ये आपके पास बनता है कि ये मुतल्लिक खबर है तमाम इंसानों के लिए। तो अब आपने मुब्तदा और खबर पहले लिखना है। पहले आप उर्दू के जुमले में से देख लें कि क्या आपकी मुब्तदा बन रही है, क्या खबर बन रही है, क्या मुतल्लिक खबर है। तो फिर मुब्तदा पहले, खबर बाद में, फिर मुतल्लिक खबर को एंड में आपने लिख देना है। जैसे अल कुरानु, कुरान हिदायत है तमाम इंसानों के लिए, तो इसमें हम सबसे पहले मुब्तदा लिखेंगे अल कुरान। हमारे पास मारिफा, उसमें अलिफ लाम के साथ आएगा। फिर हिदायत है हुदन, हिदायत, ठीक है। और तमाम लोगों के लिए लिन्नासी, ये आपकी बन जाती है एक कंस्ट्रक्शन जो के उसके साथ है। मुतल्लिक खबर के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वो है ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब इसमें आप देखें कि मुब्तदा क्या है आपकी, ये किताब। और अब इस किताब से रिलेटेड आपको इस जुमले में खबर क्या दी जा रही है, हिदायत है। यानी कुरान मजीद या कोई भी किताब, आप यहाँ पे तो खैर कुरान को स्पेसिफाई नहीं किया, ये किताब है, तो आप हाजल किताब लिखना, उसके साथ इस इशारा इस्तेमाल करना है इसमें, ये किताब आपके पास मुरक्कब इशारी बन रहा है। फिर हिदायत है, हुदन आपके पास इसके लिए वोकैबुलरी होगी और ये खबर है। और फिर हिदायत है किसके लिए, तमाम इंसानों के लिए है, किसके लिए है, तो वो फिर आपके पास बन रही है मुत्तकियों के लिए। यहाँ पे आपके पास जार मजरूर की एक तरकीब बन रही है लिल मुत्तकीन, क्योंकि आप इसको मुत्तकून नहीं लिख सकते, मुत्तकीन लिखेंगे, क्योंकि आपके पास लाम एक मुरक्कब आ गया है, हर्फ जार आ गया, तो इसकी जो आपके पास तरकीब बनेगी हादल किताबु हुदन लिल मुत्तकीन। फिर एक कुरान मजीद में जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है, मर्द औरतों पर कवाम है, जो कुरान मजीद में हमारे पास आता है अर्रिजालु कवामून अला निसाई। तो यहाँ पे आप अगर इस जुमले के ऊपर गौर करें, मर्द औरतों पर कवाम है, मर्द हमारे पास मुब्तदा है और मर्द के बारे में हमें खबर क्या दी जा रही है कि वो कवाम है। तो मुब्तदा हमारा मर्द हो गया, खबर हमारी कवाम हो गई, और कवाम किसके ऊपर है, औरतों के ऊपर, तो औरतों पर आपका मुरक्कबे जारी हो गया, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन बनेगी। तो पहले हमने मुब्तदा लिखना है मर्द अर्रिजाल अर्रिजालु मारिफा के साथ होगा, कव्वामूना कवाम की जो अरबी है वो कवाम ही होगी। अब यहाँ पे हम इसको कवामून कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो मुब्तदा है, मुब्तदा और खबर का जो हमने देखा था अदद के अतबार से बिल्कुल सेम होते हैं, एराब के अतबार से भी और अदद के अतबार से भी, ठीक है। हाँ जी, आपकी हालत रफ होगी क्योंकि हम ये खास एक जुमला बना रहे हैं। अब अगर हम किसी और सेंटेंस में इसको, ये जुमले के बीच में आ जाए और रिजाल के ऊपर कोई भी इफेक्ट हो रहा हो जिससे वो नसब या जर बनेगा, तो फिर हम जो है वो उस सेंटेंस को किसी और तरीके से देखेंगे। लेकिन जब हम अकेला बना रहे हैं तो हमने मुब्तदा उसकी मरफू ही रखनी है, ठीक है। मर्द कवाम है और फिर हमने लिखना है उसको عورتوں پر، یہ ہمیں ایک متعلق خبر دی جا رہی ہے، عالم نسائی. عالم نسائی یہ آپ کے پاس ترکیب قرآن مجید میں بھی استعمال ہو رہی ہے کہ مبتدا خبر، عالم نسائی متعلق خبر. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ کنسٹرکشن میں آپ کو دیتی ہوں جس کو آپ ٹرائی کریں. نماز نیند سے بہتر ہے. اب اس جملے میں آپ دیکھیں نماز مبتدا ہے اور بہتر ہے، آپ کے پاس خبر ہے نیند سے، آپ کے پاس ایک متعلق خبر آئی ہے. ہاں جی خیرون ٹھیک ہے، بمتنین کے ساتھ الصلاۃ خیر من النوم. ہاں جی ٹھیک ہے. پھر ایک لاسٹ سینٹینس کرتے ہیں ہم. احسان کرنے والا خیر کے قریب ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. الخیر من النوم نہیں، الصلاۃ خیر من النوم ہوگا. اس میں ہمارے پاس جو الصلاۃ ہے وہ الف لام کے ساتھ ہوگا اور خیر جو ہے وہ نکرہ ہوگا کیونکہ وہ خبر ہے. اب اگر آپ الصلاۃ الخیر لکھ دیں گے تو وہ آپ کے پاس مرکب توصیفی بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو الصلاۃ خیر من النوم. ٹھیک ہے، اب ہمارا جو لاسٹ سینٹینس ہے وہ کیا ہے کہ احسان کرنے والا خیر سے قریب ہوتا ہے اور شر سے دور ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس جو مبتدا ہے وہ احسان کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور جو خبر ہے اس میں آپ کے پاس اصل میں دو جملے آ رہے ہیں، یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ احسان کرنے والا خیر سے قریب اور شر سے دور ہوتا ہے. تو اس سینٹینس کو آپ ایسے لکھیں گے کہ احسان کرنے والا المحسن، اس کی وکیبلری ہے آپ کے پاس محسن، المحسن ہاں جی قریب من الخیری، یہ ایک آپ کے پاس آ گیا قریب خبر ہوگی، اور من الخیری یہ پھر آپ کے پاس متعلق خبر ہو گیا، اور پھر وبعید من الشر. ٹھیک ہے، اب اس سینٹینس میں آپ کے پاس جو قریب اور بعید ہے یہ خبر ہے محسن کی، اور پھر قریب کو یعنی خبر کو زیادہ ایکسپلین کر رہا ہے، متعلق خبر ہمارے پاس آ رہی ہے کہ وہ قریب کس چیز کے، خیر کے قریب ہے، اور بعید کس چیز سے، من الشر شر سے. تو من الخیر اور من الشر جو ہے وہ متعلق خبر ہو جائیں گے، اور قریب اور بعید آپ کے پاس خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب اگر کسی نے وکیبلری پوچھنی ہے پوچھ لیں، کوئی سوال کرنا ہے کر لیں، پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کلاس کو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.